न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं वह उन पर फुकारता है, वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे फाड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा? तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाएं। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। ये भजन हमने पढ़ा है, भजन संहिता उसका 10वां अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 18 आयत तक। और इस भजन में न्याय के लिए प्रार्थना की जा रही है, और जो प्रार्थना इसमें की गई है या जो बातें इसमें कही गई हैं, हमको ऐसा लगता है कि आज ही के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताई गई हैं। हमको भी कई बार ऐसा लगता है कि जो दुष्ट है वो क्या उसके मन में ये आ गया है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और कोई उसको डर नहीं है। और सचमुच यहाँ पर भी राइटर का यही एक्सप्लेनेशन है या ये उसका एक्सप्रेशन है कि 4वीं आयत में अगर हम देखें, दुष्ट अपने अभिमान के कारण ये कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यदि किसी के मन में ये आ जाए कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो नंबर 1 वाकई वो दुष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर किसी की परवाह नहीं रहेगी, उसको किसी का डर नहीं रहेगा। और हम हिस्ट्री में देख चुके हैं, जिन लोगों ने ये सोचा है कि कोई परमेश्वर है नहीं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा खूंखार, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव, सबसे ज़्यादा क्रूएल एम्परर्स या क्रूएल पर्सनालिटीज़ रहे हैं। लेकिन नंबर 2, बाइबल ये भी बताती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो नंबर 1, जब वो ये कह लेता है कि परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा दुष्ट हो जा रहा है। और नंबर 2, वो मूर्ख हो रहा है, परमेश्वर उसको मूर्ख जान रहा है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर कहा है कि तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊँचे होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सो जब परमेश्वर का न्याय होता है तो या जो न्याय की उसकी परिभाषा है परमेश्वर की, उसको उस तक पहुँच पाना दुष्टों के लिए या निर्बुद्धियों के लिए या उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ तक तो कुछ होगा ही नहीं, और यही वो सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं और उसके बाद उनका न्याय हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम कभी भी इन बातों से हमको रिलीफ नहीं होता। हमको कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा है इन लोगों को। लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हमको रियलाइज़ होगा कि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर अपनी में बरसाता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि किसी को भी नाश करें। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर सबको उद्धार का मौका मिले, इसलिए वो अंत तक धीरज धरे रहता है। वो उस व्यक्ति के लाइफ लॉन्ग तक, जब तक उसके पास अपॉर्चुनिटी तब तक उसको धीरज धरे रहता है। इनफैक्ट अगर हम यीशु मसीह की क्रूज़ की यात्रा को देखें तो उसमें जो क्रिमिनल्स उसके आसपास चढ़ाए गए थे, लटकाए गए थे, उसमें से एक व्यक्ति ने रिपेंट किया, एक ने नहीं किया। वो लास्ट पॉइंट था न्याय का, और उसके बाद उनका जो जजमेंट होने वाला था उस पॉइंट पर एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया, एक ने नहीं करा। सो परमेश्वर दुष्टों को देखता है। अब वो क्यों नहीं काम कर रहा जल्दी, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, वो हमारे हिसाब से अपने स्केड्यूल्स नहीं बनाएगा। यू नो, जब हम ऑफिस जाते हैं या हम हमारी डेली स्केड्यूल बनाते हैं तो हम किसी और के कहने के हिसाब से अपना स्केड्यूल ही बनाते हैं। हम अपनी लाइकिंग के हिसाब से, हम अपने अपने काम के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी हॉबीज़ के अनुसार अपना स्केड्यूल बनाते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। इनफैक्ट कई बार मुझे याद है जब मैं छोटा था और मैं अपने मॉम डैड से कुछ मांगता था, फुटबॉल या क्रिकेट बैट या कोई स्केटबोर्ड या कुछ और चीज़, तो वो मुझे जैसे ही मैंने मांगा वो उस वक्त नहीं देते थे। वो या तो मेरे बर्थडे का वेट करते थे या मेरे रिज़ल्ट आने का वेट करते थे कि अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो वो देंगे। सो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक का वेट करते हैं आपको पर्टिकुलर चीज़ देने के लिए। सो वैसे परमेश्वर भी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम का वेट कर रहा है, वो हमको इनफैक्ट चांस दे रहा है। हमारा भी फेथ भी टेस्ट हो रहा है उस दौरान, और ना केवल सिर्फ फेथ टेस्ट हो रहा है लेकिन सामने वाले को अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि वो परमेश्वर की ओर फिर है। अगर हम पॉलस को देखें तो पॉलस सबसे ज़्यादा दुष्ट था, उसने वो कृष्ण को मार रहा था और कृष्ण कलीसिया को सता रहा था। परमेश्वर ने वेट किया उसके रिपेंटेंस तक। और अगर परमेश्वर वेट नहीं करता उसी वक्त, क्योंकि उस वक्त भी आई एम श्योर मसीह जो है सारी प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु पॉलस को कुछ कर, प्रभु पॉलस को मार डाल, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, आई एम श्योर इस तरह की प्रार्थनाएँ हो रही होंगी। और परमेश्वर ने उसका मन परिवर्तन कर दिया। अगर परमेश्वर उसी तरह से बिहेव करता है या उसी तरह से एक्ट करता है जैसे हम चाहते हैं तो अभी तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और जो पॉलस है वो इतना बड़ा प्रचारक नहीं बन पाता। लेकिन थैंक गॉड कि पॉलस ने रिपेंट किया और वो परमेश्वर के सन्मुख आया। उसी तरह से अगर हमारे कोई सताने वाले हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम इस बात से ना चढ़ें कि दुष्ट क्या कर रहा है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर को के सामने मूर्ख ना बने, वो क्रूस की कथा को मूर्खता की चीज़ें ना समझे, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख आ सके और परमेश्वर का जो न्याय है वो जैसे कि यहाँ पे 17 आयत में कहा है, यह वह तू ने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उसका मन तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा। दैट मीन्स ही विल लिसन। तू अनाथ और पिसे हुए का न्याय कर, तू अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। एंड बहुत सारी हिस्ट्रीज में ऐसे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं जिसमें से बहुत सारे लोगों ने देखा है कि कितना बुरा हश्र हुआ है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जाके इन सारी चीज़ों को किया है। सो न्याय होगा, डेफिनेटली होगा, और दिस इज़ नॉट डिक्लेरेशन नहीं है लेकिन ये प्रार्थना है। इसलिए हम शुरुआत जो हमने टाइटल पढ़ा है उसमें लिखा ही हुआ है न्याय के लिए प्रार्थना। सो इसलिए न्याय होगा और ये उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। सो मैं चाहता हूँ कि और हम क्रिश्चियंस को भी न्याय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न्याय नहीं करना चाहिए। हम जाके अपने हाथ में जजमेंट नहीं ले सकते या हम जाके फैसले नहीं ले सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते किसी के बेसिस पे, उसके एक्ट्स के बेसिस पे। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा टूल प्रार्थना करने का है और हम वो प्रार्थना करें। अब प्रार्थना कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है ये हमें बाइबल बताती है। और सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह ने हमें बताई है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। सो हम न्याय के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ये न्याय के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो। सो आई होप आपको ये भजन इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप से मेरी निवेदन है कि आप भी न्याय के लिए प्रार्थना कीजिए अपने जीवन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे जजेस के लिए, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जिनके साथ भी आप इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई दुष्टता कर रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए, और ऐसा करने से बाइबल बताती है ऐसा करने से हम उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगा देंगे। सो वी विल बी ऑन द सेफर साइड। सो इसलिए प्रार्थना करिए, न्याय के लिए प्रार्थना करिए। यदि आपको ये वीडियो और पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने लोगों को आप इनकरेज कर सकते हैं इसके थ्रू आप ज़रूर करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद आज के इस दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए कि हमें आपने ये अवसर दिया कि हम न्याय के लिए आपसे प्रार्थना कर सकें। हम जानते हैं प्रभु जी हमारे पास केवल एक ही टूल है और वो है ये प्रार्थना करना, और इसे प्रभु जी हमारी मदद करें कि हम इस टूल को ना खोएं और हम इस वेपन के द्वारा आपके वचन को फैला सकें, ना केवल वचन को फैला सकें पर अपने आप को शांति हम दे पाएँ, अपने परिवार में हम शांति ले पाएँ, और प्रभु जी आपकी आशीष हम इसके द्वारा ले सकें। और हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी जो कहीं ना कहीं दुष्टता कर रहे हैं हमारे जीवनों में, मदद करें प्रभु जी कि आपके द्वारा उनका न्याय हो सके, लेकिन जो हमारा पार्ट है वो हम पूरा कर सकें, हम दीन बन सकें, नम्र बन सकें, और होने दें प्रभु जी कि हमारे प्रार्थना करने के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा लोगों को पता चल सके कि हम आपके फॉलोअर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हैं इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है। मैं प्रार्थना चाहता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उनके जीवनों को बदलें और उनको चेंज करें और होने दें कि वो आपके को अपना उद्धारकर्ता समझ सकें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।